Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और यदि उसके कोई एक अंग खंडित है, भंगा है, तो छोटा भी अंग खंडित है, तो फिर उसको उस बलि में प्रयोग नहीं किया जाता था। बोलो, सारा शरीर ठीक है, एक छोटा सा अंग भंग हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? बोले, यही तो कर्म का नियम है, मीमांसा का नियम है, वैदिक क्रतु का यही नियम है कि अंग भंग हुआ कि अंगी भंग हो गया। अब इसको और दूसरी भाषा से समझना हो तो यूं समझ लो, जैसे एकादशी आप व्रत करते हो। अब एकादशी व्रत के नियम यह है कि आप उस दिन अन्न मत खाओ, जिसको अन्न कहते हैं उस अन्न को मत खाओ, दाल चावल आदि। विशेष करके शास्त्र ने अन्न चावल को ही अन्न के रूप में लिया गया है। तब अन्न नहीं खाना, ये विधि है एकादशी की विधि। यदि आपने दिन भर एकादशी व्रत किया और आपने अन्न नहीं खाया, कदाचित शाम के समय में जबकि एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया और उस उद्यापन करने से पहले ही यदि आपने एक छोटा सा भी चावल का कण आपके मुख में पड़ गया, तो ये समझ लो कि वो एकादशी का फल आपको मिलने वाला नहीं है। आप ये कहोगे कि हमने पूरे थाल भर के भात तो नहीं खाया, एक छोटा सा कण ही तो खाया, इतने से दिन भर का व्रत बेकार चला जाएगा, अंग भंग हो गया, नियम भंग हो गया, वो फल नहीं दे सकता एकादशी का। तो फिर वो एकादशी का व्रत सब निष्फल हो गया एक छोटे से कण के चलते। हाँ, एकादशी का जो फल है वो तो निष्फल ही होगा, तुमको दिन भर भूखे रहने का फल मिल जाएगा, डाइटिंग का फल तो मिलेगा ना, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन जो डाइटिंग का फल है वो एकादशी का फल नहीं है। एकादशी का फल चित्त शुद्धि होगा, एकादशी का फल चित्त शुद्धि, भगवान में भक्ति और उसी के अपूर्व आदि द्वारा अन्य लोक की, उत्तम लोक आदि की प्राप्ति होगी, परंतु डाइटिंग से तो ये होगा नहीं। नेपाल में एक व्यक्ति आए, उन्होंने किसी ने कहा हमको, महाराज फलाना व्यक्ति ने फलाने राजनीतिक पार्टी को 1.5 करोड़ रुपया दान दिया। हमसे कहा उन्होंने, हमने कहा ये गलत हो गया। बोले, क्यों महाराज? यानी किसी पार्टी को 1.5 करोड़ रुपया दिया ये बात तो ठीक है, दान दिया ये बात कहते हो तो गलत है, क्योंकि पार्टी को दिया गया जो सहयोग है वो दान कोटि में आता नहीं है, इसलिए कैसे होगा कि वो दान? बोले, क्यों महाराज? दूसरों को दिया जाना ही यही तो दान है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। जैसे प्रेमपुरी आश्रम को यदि कोई 1 करोड़ रुपया देगा तो उसको दान कहलाएगा कि नहीं है? तो ये व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो संस्था है। तो इसी तरह किसी को, पंडित को देना ही दान होता है क्या? किसी संस्था को देना दान नहीं होता है। पार्टी भी तो, राजनीतिक पार्टी भी तो एक संस्था है, इसलिए उस संस्था को दिया गया है। प्रेमपुरी को आश्रम को देने दिया हुआ रकम वो दान होवे और किसी पार्टी को दिया वो दान नहीं कहलावे, इसका मतलब क्या है महाराज? हमसे पूछने लग गए। हमने कहा, देखो, उसी को दान कहा जाता है जिसको देने के बाद अपूर्व पैदा होकर अदृष्ट बनता हो, उसको तो दान कहा जाता है। फिर वह अपूर्वा अदृष्ट मरणा पश्चात भी उसको प्राप्त होता है, वो पुण्य के द्वारा वो पुण्य प्राप्त होता है, तब तो दान कहलाता है। और वो कर्म अपूर्व नहीं बनेगा तो अदृष्ट नहीं बनेगा, अदृष्ट नहीं बनेगा तो लोकांतर या जन्मांतर में उसका कोई फल न होने के कारण वह दान कोटि में नहीं आ सकता है, क्योंकि वेद विहित कर्म ही दान अपूर्व उत्पन्न कर सकता है, वेद विहित नहीं है वो कर्म अपूर्व उत्पन्न नहीं कर सकता। अभी आप लोगों को थोड़ी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अपूर्व एक विशेष वस्तु मानते हैं ये मीमांसक लोग। अब विचार करो, हमको अपूर्व नहीं चाहिए, हमको तो अदृष्ट भी नहीं चाहिए, कालांतर में उसके फल भी नहीं चाहिए, तब फिर ये क्यों देते हो? तो क्या उस पार्टी को दिया हुआ सहयोग से चित्त शुद्ध होगा? है, चलो प्रेमपुरी आश्रम को तुम दोगे, उसके अपूर्व न उत्पन्न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, है? अदृष्ट न बने नहीं सही, मरने के बाद इसका पुण्य हमको प्राप्त न हो नहीं सही, तो फिर क्या करते हो? बोले इस कर्म से, इस दान से अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा तो तुम्हें यह फायदा ये होगा कि इस जन्म में तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तब तो उसको हम दान कोटि में ले सकते हैं। क्या किसी पार्टी को दिया हुआ सहयोग वो चित्त शुद्धि का साधन होगा, माध्यम होगा? न तो इस जन्म में चित्त शुद्धि का माध्यम बनेगा, न ही उसका अपूर्व के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न होकर जन्मांतर में पुण्य का फल प्रदान करेगा। हाँ, इतना जरूर होगा, जब तक तुम जीते रहोगे तब तक तुम्हारा नाक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये फल जरूर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब समझ के बाद हम क्या कहना चाह रहे हैं, है? ये जरूर है कि जब तक तुम जीते रहोगे तब तक तुम्हारा नाक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब अहंकार बढ़ जाएगा, मैंने उसको ये दिया, मैंने इतना किया, ये इसके अलावा उसका और कोई प्रयोजन नहीं है। चंदांसी यज्ञ क्रतवा, क्रतु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। कौन सा यज्ञ? तो यूप विशेष। यूप किसके लिए? तो बोले उस यज्ञ में पशुओं का आलंबन होना है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि में पशु का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे कि फिर तो ये हिंसामय यज्ञ हो गया। ये हिंसामय यज्ञ के लिए वेद ने फिर क्यों कहा? जिस यज्ञ में पशु का आलंबन होता है वो तो हिंसामय योग्य है। तो देखो, एक एक नियम है, स्वयं कहा गया है, मीमांसकों ने इस बात को माना है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ही, क्योंकि वहां जो क्रतु है, पशु आलंबन जिन यज्ञों में होता है, वहां पशु को सीधा काटा नहीं जाता है, इसलिए उसको हिंसा नहीं मानेंगे। वहां क्या होता है कि मंत्रों के द्वारा, मंत्र के द्वारा उस पशु को उस शरीर में निष्प्राणता संपादन की जाती है, वही हथियार का प्रयोग नहीं होता है, मंत्र प्रयोग करके उस शरीर में, उस पशु शरीर में निष्प्राणता का प्रयोग किया जाता है। निष्प्राणता के बाद उस जो मृत शरीर है, यानी प्राण से परित्यक्त हुआ हुआ जीवात्मा ने परित्याग किया हुआ उस शरीर का फिर उस यज्ञ में प्रयोग होता है। ईशु भी सूची भी सम्यंतुत्वा इत्यादि मंत्र यह समेत यज्ञ का ही प्रसंग है। तो इसीलिए उसको, क्योंकि किसी प्रयोग से मारा नहीं गया, हथियार आदि से मारा नहीं गया है, इसलिए उसको वैदिक हिंसा हिंसा नहीं माना जाएगा, तो वो दोषित नहीं है। तो आप कहोगे कि महाराज वो पशु जीना चाहता था, जीना चाहते हुए यज्ञ करने वाले ब्राह्मण या यजमानों के षड्यंत्र से वह अपने प्रारब्ध से जितना समय तक जीना चाहता था उतने समय तक तो जी नहीं पाया, और क्योंकि उन लोगों ने मंत्र प्रयोग करके उस शरीर से अलग कर दिया है। देखो, उस शरीर से अलग कर देने पर उस जीवात्मा के उसी अकाल मृत्यु या दुर्घटना आदि मृत्यु आदि माना जाता, तब फिर उसके चलते वह कालांतर में कुछ नीच या हीन योनियों में जन्मता पैदा होता, तब तो अन्याय होता। उस यज्ञ में प्रयोग हुआ हुआ पशु है, उसका तो उस मंत्रों के माध्यम से शरीर से अलग किया हुआ होने के कारण उसका उद्धार तो स्वतः हो ही जाता है, इसलिए उसको हिंसा नहीं मानते हैं। अब ये वैदिक प्रयोग है, लेकिन इसके चलते अब वो मंत्र की शक्ति का तो प्रयोग करते नहीं है, इसलिए यज्ञ के नाम में, देवताओं के नाम में, देवी देवताओं के नाम में उस पशुओं को लाके काटना शुरू कर दिया है। निष्प्राण करने की विधि मंत्रों से थी, वो तो अब क्षमता है ही नहीं, मंत्र साधना शक्ति है नहीं, तो फिर क्या करें? तो उस यज्ञ को छोड़ते नहीं है, फिर वो लाके काटमार करने लग जाते हैं, फिर उसको हिंसा कहा गया, इसलिए उसका निषेध स्वयं वेद ने सर्वत्र किया भी है। तो प्रसंग आ गया, इसलिए हमने इसकी व्याख्या कर दी है आपको समझने के लिए। चंदांसि यज्ञ क्रतवो व्रतानि, क्रतु जितने भी वेद विहित यज्ञ हैं, यूप प्रयोग होने वाले वे सब, और साथ में व्रतानि, आप जो व्रत करते हो। व्रत कई प्रकार के होते हैं, प्रायः चित्तात्मक व्रत होते हैं, और सबसे कठिन व्रत तो प्रायः चित्तात्मक कृष्ण चंद्रायण व्रत कहलाता है। यहां व्रत शब्द का अर्थ वह, और व्रत का शाब्दिक अर्थ तो ऋतु वर्ण है, तुमने अपनी ही इच्छा से उस चीज को वर्ण किया है, तो उसके माध्यम से तुम जो प्राप्त करोगे तो ऋतु वर्ण है। क्योंकि व्रत का दो हेतु है, गुणाधान और दोष अपनायन। क्योंकि यूं तो सभी क्रियाओं का ये दो उद्देश्य है, कर्म का क्रिया का ये दो उद्देश्य है, गुणाधान और दोष अपनयन। आप कोई व्रत करते, जैसे एकादशी का जो व्रत है वह दोष अपनयन का व्रत नहीं है, एक क्रिया दोष अपनयन, यानी अपने जीवन के दुर्गुणों को, दूषित तत्वों को, दुर्गुणों को, पाप आदि को नाश करने के लिए एकादशी का व्रत नहीं होता। एकादशी के व्रत से पाप नहीं कटते हैं, क्योंकि ये प्रायश्चित व्रत नहीं है, एकादशी व्रत प्रायश्चित व्रत नहीं है, ये तो शास्त्र विहित व्रत है, इससे माने आपका अदृष्ट पुण्य उत्पन्न होगा, पाप नाश नहीं होगा। और पाप नाश करने के लिए फिर क्या है? तो प्रायश्चित व्रत ये पाप नाशक है, और प्रायश्चित व्रत आपके दोष है अर्थात पाप को नाश करने में समर्थ है, बल्कि उस पाप का ही नाश करने में समर्थ है। आपने किसी ऐसा कर्म कर लिया जिसको ये कर्म करके इसका इस प्रकार का पाप उत्पन्न होता है, यह आपको ज्ञान नहीं था और आप उस कर्म को कर लिए, अनजान में कर्म कर लिए, बाद में आपको पता चला कि अरे ये काम तो शास्त्र ने निषेध किया हुआ कर्म है, और वो जो मैंने कर लिए अब क्या होगा? तब उस अवस्था में फिर शास्त्र ने कहा, यदि अनजान में तुमने उस निषिद्ध कर्म को कर लिया है तब उसके लिए प्रायश्चित का विधान है, और यदि तुमने उसको जानते हुए भी उस कर्म को कर लिया किसी मोहवश, रागवश, लोभवश, फिर उसके बाद प्रायश्चित का विधान नहीं है, उन कर्मों का प्रायश्चित का विधान नहीं है। हा तो प्रायश्चित का विधान अनजान अज्ञात कृत शास्त्र निषिद्ध कर्म का प्रायश्चित होता है, ज्ञातपूर्वक कृत शास्त्र निषिद्ध कर्म का प्रायश्चित नहीं होता। व्रत शब्द का अर्थ यही हुआ। व्रतानि बहुवचन है, इसलिए अनेक व्रत हैं, विहित व्रत हैं पुण्य के लिए, और प्रायश्चित व्रत हैं पापादि का प्रायहार करने के लिए। उन प्रायश्चित व्रतों में बहुत से हैं, सामान्य प्रायश्चित व्रत तो यही है कि आप कोई भी शुभ कर्म करने के लिए आरंभ करते हो, जब तैयारी शुभ कर्म करने की पूरी तैयारी करके जब आप आसन में बैठते हो तब एक कर्म किया जाता है, सबसे पहले उस कर्म का नाम है प्रायश्चित गोदान। आप समझ गए कि नहीं? आप कोई भी शुभ कर्म करने के लिए बैठो, पूरी तैयारी साधन सामग्री को करके जब आप आसन लगाकर बैठते हो, ब्राह्मण पूछते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, अब आप तैयार हैं, और कुछ करना बाकी तो नहीं रहा? तब आप कहते हैं हाँ महाराज, अब सब ठीक हो गया है, अब आप यज्ञ शुरू करिए। तब फिर वह ब्राह्मण कहते हैं तो सबसे पहले प्रायश्चित गोदान करो, क्योंकि अपने जान कर या अनजान में जो कुछ भी अनजान में अपने कर्म किया है उसमें अनजान में कुछ खा लिया है, अनजान में कुछ छू लिया है, अनजान में कोई कर्म कर लिया है, अनजान में कहीं चले गए हो, ये सब का जो दोष आपके जीवन में सन्निहित है उन सब से आपको मुक्त किया जाए, तब जाकर आप यज्ञ के अधिकारी होंगे। तो उसके लिए पहले प्रायश्चित गोदान कराते हैं और प्रायश्चित गोदान के बाद फिर आपको उठना या अन्य कर्म करना नहीं होता। जब तक वो कर्म समाप्त नहीं होता तब तक फिर आप अन्य कोई लौकिक व्यवहार करने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि आप यदि उठकर फिर लौकिक व्यवहार में कर्म में लग जाओगे उस लौकिक कर्म में फिर कोई और कर्म ऐसा निषिद्ध हो जाएगा जिसके चलते फिर पाप हो जाएगा, फिर आप यज्ञ के अधिकारी नहीं रहोगे। तब फिर हर कर्म के पहले प्रायश्चित गोदान होता है। जब तक आप यज्ञ करेंगे तब तक आप शुद्ध रहेंगे, आपके जीवन में पाप नहीं रहेगा, क्योंकि प्रायश्चित हो गया गोदान के द्वारा। अब उसके बाद यज्ञ समाप्त करके लघु रुद्री करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, सत्यनारायण की पूजा लगाते हो, ये सब करने से पहले पंडित लोग प्रायश्चित गोदान कराते हैं। उसके बाद फिर आप कर्म में लग जाते हो तो पता नहीं क्या कर लेते हो क्या नहीं कर लेते हो। जब भी वैदिक कर्म करने के लिए आप जब तैयार होते हैं फिर प्रायश्चित गोदान, ये देख लो ये नियम है, ये तो सामान्य प्रायश्चित कर्म है। लेकिन इन सामान्य जो प्रायश्चित कर्म है वो सामान्य अज्ञातकृत पाप का ही प्रायश्चित होगा, विशेष पापों का प्रायश्चित नहीं होता। फिर उस विशेष पाप प्रायश्चित का विधि क्या है, तो बोले कृष्ण चांद्रायण व्रत है, वो बहुत कठिन व्रत है, इसके अलग अलग विधियां हैं, वो एक महीने तक चलने का व्रत है, पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा है उस दिन आप एक ग्रास खाओ, वो अन्न भी किस प्रकार से, सारी विधि है। गाय को तुम जौ खिलाओ और वो गाय गोबर करे, उस गोबर को धो लो, धोने के बाद उस गोबर में रहे हुए जो जौ के कण हैं, दाने हैं, जो गाय के पेट में पच गए, जो नहीं पचे जो रहे उसको फिर धो लो, धोकर फिर उसको पीस लो, उस पीस कर उसका जो आटा बनेगा उस आटे को पकाओ, पकाकर इतना ही खाओ कि एक ही ग्रास एक बार आपके मुख से पेट में चला जाए, एक ग्रास खाओ, फिर दूसरे दिन दो ग्रास खाओ, तीसरे दिन तीन ग्रास खाओ, चौथे दिन चौथा, तब अमावस्या के दिन पूरा 15 खाओ, या फिर घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, फिर घटाते जाओ। तो ये शुक्ल पक्ष में बढ़ाना, कृष्ण पक्ष में घटाना, ये जो नियम है ये कृष्ण चांद बड़ा कठिन व्रत है, ये व्रत भी, क्योंकि ये सब वेद से ही संबंधित हैं। चंदाम से यज्ञ कर तबो व्रतानी, साथ ही कहा भूतम भव्यम यच्च वेदा वदंती, वेद ने जो कहा है, यज्ञ कहा, व्रतु कहा, व्रत कहा, और भूता भूत काल, क्योंकि इस काल का संबंध भी यज्ञ से ही है, वैदिक यज्ञ से है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इस समय शुक्र अस्त है इसलिए वैदिक कर्म होगा नहीं, बात समझ गए कि नहीं, इस समय क्या है शुक्र अस्त है वैदिक कर्म नहीं होगा, बृहस्पति अस्त है तो वैदिक कर्म नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। अब ये जो शुक्र अस्त है, शुक्र अंधा है, बृहस्पति अस्त है, ये बात कैसे पता चलेगा, तो बोले भूतम काल से पता चलेगा, भूतम भव्यम यच्च वेदा भवंती, यच्च शब्द से दोनों के बीच को ले लेना, वर्तमान काल, ये तीन काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सबको किसने कहा, वेदा वदंती कहते हैं, क्या अस्मान माई सृजते विश्व में उसी एक माई से, माया अधिपति से माया विशिष्ट चैतन्य से मायोपहित चैतन्य से ईश्वर से अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत्। ये सारा विश्वम एतद विश्वम अस्मान मायी सृजते तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। बड़ा सुंदर मंत्र है। उसने माया के माध्यम से सारे विश्व को उत्पन्न किया, उसके द्वारा उत्पन्न किए हुए इस विश्व में मोहवश अन्य अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णम, उसमें जो अजो अन्य करके जो जीवात्मा के लिए कहा गया था वह माया सन्निरुद्धः। माया उस माया कार्य में आसक्त होकर वह उसमें फंस गया। परमात्मा ने बनाया था परंतु जीवात्मा फंस गया। अब देख लो, आप लोगों को ये घटना याद होना चाहिए। मुझे लगता है 2-2.5 महीना पहले शायद उत्तर प्रदेश के आगरा के कहीं पास में एक किसान अपने खेत में बोरिंग कर रहा था और बोरिंग करते करते वो बहुत डीप में चला गया, परंतु पानी नहीं आया तो उसने उस बोरिंग को ऐसे ही छोड़ दिया, है ना? खूब न्यूज पत्र पत्रिकाओं में खूब आया। तब फिर वो दो तीन बच्चे वहां खेल रहे थे, खेलते खेलते एक लड़की उस बोर के जो उसमें था बोर में उसमें गिर गई बेचारी, और गिरकर बीच में जाकर वो अटक के बैठ गई, है ना? कैसा न्यूज आया था देख लो। और मरी नहीं, जाकोड़ा के चाहिए मार सके ही ना कोई। जब वो खोजने लगे कहां गई तो वो उसके साथ में खेलने वाले और बच्चे थे, उन लोगों ने कहा कि वो तो उस गड्ढे में गिर गई है, बोर में गिर गई है। आकर देख के आवाज लगाए तो नीचे से उसकी आवाज आती है, 40 फीट नीचे जाकर वो अटक गई है। 80 फीट का वो गहराई था, 40 फीट में जाकर वो अटक गई। तब फिर सब उसको निकाले तो कैसे निकाले, फिर आर्मी ने उसको बीच में साइड में दूसरा टनल बनाया, वहां से उसको सुरक्षित निकाला। कितने दिनों के बाद, कितने घंटों के बाद? बहुत घंटों के बाद निकाला, मुझे लगता है शायद 2 दिन के बाद निकाला है, चौथे 4 दिन के बाद निकाला। चलो, मैं ये कहना ये चाहता था, जिसने वो बोर बनाई है वह बोर उस बच्चा फंसकर उसमें कष्टों को भोग भागी बने, इस उद्देश्य से तो उस बोर बनाया नहीं था, है ना? कोई बच्चा फंसे उसमें कष्ट का भागी बने इस उद्देश्य से उस किसान ने बोरिंग किया था क्या? बोरिंग तो उसने अच्छे कामों के लिए किया था, लेकिन वो बच्चा असावधानी किया तो जाके फंस गया। तो फंसा किसके कारण से? उसके बोर बनाने के कारण से कि असावधानी के चलते? लेकिन होने गया वो बच्चा फंस गया और तो कष्ट का भागी बन गया, तो उसी की गलती से हुआ। तो इसी तरह ये जगत परमात्मा ने अपनी ही माया उपाधि के चलते ये सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाया था, परंतु ये जीवात्मा उसके द्वारा बनाए गए जगत में विश्व में मोहवश फंस गया, सन्निरुद्ध। तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। देख लो, अब ये बात हम कभी कभी उस दृष्टांत से कह दिया करते हैं, जैसे 2 प्रकार के जीव हैं, एक मकड़ी और दूसरा रेशम का कीड़ा। गुजराती में उस मकड़ी को करोड़ियो क्या कहते हो आप लोग? जाला बनाकर रहता है उस मकड़ी का कीड़ा, करोड़ियो। और दूसरा एक रेशम के जो धागा बनाता है कीड़ा। दोनों ही अपने ही शरीर से अपने ही मुख से धागा निकालते हैं, दोनों के धागा निकालने का उद्देश्य है वो अपने को रहने का एक आराम का घर बने, है कि नहीं बोलो। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि मैं अपने शरीर से धागा निकालूं, उन धागों के द्वारा मैं आराम से रह सकूं, ऐसा घर बनाऊं जिस घर में मैं आराम से रह सकूं। तो उस करोड़ियों उस मकड़ी ने भी धागा निकाला और अपने शरीर से निकाले हुए धागे को कहीं इधर दीवार में, कहीं उधर दीवार में, कहीं उधर दीवार में, या बाहर होगा तो या इस तिनके में, उस तिनके में, उस तिनके में, उस धागों को खाली तिनके तिनकों में ही जोड़कर एक जाला बना लिया। उस जाले के बीचों बीच में जाकर आराम से रहने लग गया। कालांतर में जब कोई व्यक्ति देख लेता है कि इसने एक गंदा कर दिया, जाला बना दिया है, तो जाले को तोड़ना चाहता है। तो जब वो कोई जाले को तोड़ना चाहता है, तोड़ता है, तब वह मकड़ी तुरंत वहां से भाग जाता है, स्वयं सुरक्षित रहता है, भाग जाता है। उसका बनाया हुआ घर बिगड़ जाता है आपके झाड़ुओं से, आपके द्वारा, परंतु वो सुरक्षित भाग जाता है। फिर दूसरी जगह जाकर घर बनाता है, लेकिन उस जाले में खुद फंसता नहीं है। अब मक्खी उड़ते हुए जाकर फंस जाए तो उस मकड़ी का क्या गलती है भाई, है? मक्खी फंस जाती है, अब वो नहीं फंसता। इसके ठीक विपरीत वो रेशम का कीड़ा, वो भी अपने शरीर से धागा निकलता है और बढ़िया घर बनाऊंगा, वहां मैं आराम से बैठूंगा, समझता है और अपने शरीर में वह लपेटता रहता है। देखो प्रक्रिया दोनों की एक ही है, उद्देश्य दोनों का एक ही है। लेकिन पहले वाला मकड़ी ने जिन धागों को अपने शरीर से निकालकर अपने घर बनाया, उस घर का संबंध अपने शरीर से नहीं है, यानी एक भी धागे को अपने शरीर में कहीं भी जोड़ा नहीं, अन्य में ही जोड़ा, बार बार जोड़ा, तिनकों में जोड़ दिया, दीवारों में जोड़ दिया, परिणाम आप खुद फंसा नहीं। और रेशम का कीड़ा वो धागा निकालता है, वो धागे को अपने दायरे में बैठता है, अपने शरीर में लपेटता है, लपेटते 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 इतना लपेटता है, कहता है कि आहा क्या कोमल, क्या नरम, क्या सॉफ्ट हो गया, क्या आनंद आ रहा है। तो आगे थोड़ा सा एक छिद्र होता है, मुख होता है, वो खुला रहता है, तब वो समझता है कि ये खुला है, यहीं से ठंडी आ रही है, यहीं से गर्मी आई, इसको भी बंद कर दो करके फिर वो धागा निकालकर उस छिद्र को भी बंद कर देता है, तो सब बंद कर जाता है, तो अपने आप ही अंदर फंसता है, फिर निकलने की रास्ता उसको नहीं है, वो रास्ता ही नहीं रखा है, तो अब क्या करें। तब फिर ये रेशम के धागे निकालने वाले यदि उसको पकाए के बिना उस धागे को निकालने लग जाएंगे तो कच्चा धागा है, इसलिए टूट जाएगा, काम में आएगा नहीं। अब उसको बिना टूटे पूरा का पूरा लंबा का लंबा निकालना है तो उसको पहले खूब पानी में पकाना पड़ेगा, खौलते पानी में डालकर खूब पकाएंगे, जैसे आप चना पकाते हो, खूब पकाओगे तो ज्यादा पकने के बाद वो धागा फिर इतना मजबूत हो जाएगा, तब एक छोर को पकड़कर खींचेंगे तो पूरा का पूरा लंबा बिना टूटे वो धागा निकलता है। परंतु कीड़ा तो मर गया ना, खत्म हो गया ना, पहले फंस गया था, अब मर ही गया। उस कीड़े को मारना उस किसान का भी लक्ष्य नहीं है, वो रेशम के धागे को निकालने वाले व्यक्ति का भी लक्ष्य नहीं है, परंतु फंस गया तो अब करे क्या, मरे बिना उसका उपाय ही नहीं है। तो ऐसे ही तस्मिश्चान्यो माया सम निरुद्ध, परमात्मा तो उस किसान की तरह है जिसने इस सारी जगत को उत्पन्न किया, इसका उद्देश्य दूसरे ही था। परमात्मा ने यह सोचकर इस जगत को नहीं बनाया था कि यहां सारे जीव फंसकर मर जाए, यदि यह सोचकर बनाया होता तो इस सृष्टि परमात्मा गलत करता, ये कर्म वो लक्ष्य ही नहीं था, उद्देश्य फंस गए, अब क्या करें। तो किसके चलते, तो इसी के अज्ञानता के असावधानी के चलते फंसा है जीवात्मा। तो बोले कि इस तरह बार बार जीवात्मा फंसते हैं तो ऐसा सृष्टि ही न बनावे। परमात्मा को ये चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं प्रस्ताव पास करके, आज प्रेमपुरी आश्रम के कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास करके लिख के भेज देते हैं महाराज कि आपने बनाया तो अच्छे उद्देश्य से, लेकिन ये जीवात्मा उसमें बार बार फंस गए, इसीलिए ये जीवात्मा न फंसे इसके लिए सृष्टि ही मत बनाओ। जब सृष्टि नहीं होगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे प्रारब्ध का क्या होगा, तुम्हारे कर्म फलों का क्या होगा? तब परमात्मा उसका उत्तर क्या देगा मालूम है? सृष्टि बनाने का काम मेरा है, मैं बनाता रहूंगा, तुम सृष्टि को रोको कहने से हम रोकने वाले नहीं है। तब फिर हम तुम सृष्टि बनाते जाओगे, हम फंसते जाएंगे, तो कब तक चलेगा ये? तो बोले तुम फंसना नहीं चाहते हो? बोले नहीं महाराज, हम दोबारा फंसना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हो तो इस तरह काम करो, हम तुमको उपाय बता देंगे। मेरे द्वारा बनाई हुई सृष्टि में आसक्ति नहीं करना। खत्म हो गई बात। आसक्ति क्यों करते हो? आसक्ति नहीं करना है, इसलिए असंग शस्त्र नदृढ़ अनुचित हुआ। तो आसक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें फंसने को नहीं मिलेगा, और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।